ओम शांति। इस संध्या के समय में होनहार बादशाहों की इस सभा में डायमंड हॉल के व्यासपीठ पर उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी का आप सबकी तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय गीता बहन जी, आपको यह ज्ञान 1969 में प्राप्त हुआ। दो दिन से ये डेट थोड़ा बार बार सुनने में आ रहा है, 1969। ऐसा लगता है कि 1969 में कई विशेष रत्न इस यज्ञ में आए। आप बहुत जल्दी ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए। 1972 में आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया। आप अपने विद्यार्थी जीवन में अत्यंत मेधावी छात्रा थी। आपको बाबा ने गीता का ज्ञान देने के लिए चुन लिया। आप अनेक स्थानों पर अपनी सेवाएं दी, सूरत, भरूच, बड़ौदा और विशेष भावनगर में आप सब जोन के इंचार्ज के रूप में 14 वर्ष रही और विशेष सेवा के लिए बाबा ने आपको इस मुख्यालय में ले आया। ज्ञान अकेडमी में आप 17 वर्ष अपनी सेवाएं दी। रिसेप्शन, आवास निवास विभाग और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने अपनी विशेष सेवाएं दी हैं और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाले बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज विंग के आप इस हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपके अंदर अनेक विशेषताएं हैं। आप अनेक भाषाओं में अनेक विषयों पर वक्तव्य देते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपना अमूल्य वक्तव्य देते हैं। टीवी, रेडियो आदि और ज्ञानामृत पत्रिका आदि में भी आपका लेखन वक्तव्य हम सुनते पढ़ते रहते हैं। आपकी विशेषता है आप सरल स्वभाव के हैं, मधुर भाषा, स्नेहपूर्ण व्यवहार आपकी जीवन की शोभा है। आप सबसे सरल रूप से मिलजुलती रहती हैं। ऐसे गीता ज्ञान देने वाली गीता बहन जी होनहार बादशाहों को बेफिकर बादशाह बनाने हम सबके बीच उपस्थित है। मैं पुनः स्वागत करती हूँ आदरणीय गीता बहन जी का।
ओम शांति। स्वमान के साथ शिवलीला बहन ने हम सबको स्थित कर दिया। होवनहार सतयुगी दुनिया के बादशाह राजाएं और संगम युगी बेफिकर बादशाह, विश्व का राजा बनना, मालिक बनना, कितनी सरल विधि बाबा ने हमें बताई। न लड़ाई की बात, न चढ़ाई की बात, पढ़ाई से राजाई, कभी सोचा भी नहीं था, पर ये सत्य है। परमात्मा के सत्य ज्ञान की वो शक्ति है जो इतनी ऊंची प्राप्ति कराती है। इतनी ऊंची राजाई के मालिक हम बनेंगे, उसके तीन कारण। परमात्मा के सत्य ज्ञान की शक्ति, सत्य में कितनी ताकत होती है। जो कर्मेंद्रियों का राजा हमें बनाता है, मन बुद्धि संस्कार इन शक्तियों का मालिक बनाता, ये स्वराज्य अधिकारी बनने से विश्व राज्य अधिकारी बनते। दूसरा कारण, इतनी ऊंची प्राप्ति क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं आकर कहें और उसकी आज्ञा को स्वीकार कर हम माने और बने, उसका फल। कहानियों में, इतिहास में पढ़ते रहे हैं कि राजाओं का मनपसंद कुछ काम करते थे तो कितनी बड़ी प्राप्ति कराते थे। इतिहास में पढ़ा है ना, कहानियों में, राजाओं के समय राजा का मनपसंद कोई चीज काम हो गया तो कितने गांव दे देते थे, कितने सोना मोहरों से भरे हुए कलश दे देते थे। राजा प्रसन्न हुआ माना, कितनी कीमती चीजें वो दे देता था। भगवान आए कहें और हम माने, दिल पर चढ़ जाते हैं हम तो दिल से प्राप्ति बाबा करा देते हैं। भक्ति में भावनाओं का फल मिला, कर्म सही नहीं थे पर भावना का भी इतना। संगम युग में भगवान स्वयं साक्षात सन्मुख आए और उनके कहने पर हम चले तो वो वारी जाते हैं, इसलिए राजाई मिल जाती है। और तीसरा, संगम का, चढ़ती कला का समय, समय पर जो कर लेता है वो विजयी बन जाता है, प्राप्ति कर लेता है। जो समय को परख लेता है और कार्य कर लेता है वो बहुत बड़ी प्राप्ति कर जाता है। प्रकृति उसका एग्जाम्पल है। सीजन में बोया हुआ बीज अनेक गुणा फल और बहुत ही रस और कस वाला फल देती। एक कण बीज से मण बीज देती है। प्रकृति में भी इतनी शक्ति। तो ये संगम का समय, चढ़ती कला का समय, श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय। जो इस समय को पहचान कर सीजन में मेहनत कर लेता है वो ऊंची प्राप्ति कर लेता है, इसलिए राजाई के मालिक बनेंगे। और ऐसी राजाई जिसका वर्णन कितना बाबा ने हमारे आगे किया, सर्पों से संपन्न विश्व, ए वन विश्व, प्रकृति और पुरुष दोनों सर्वोत्तम स्थिति में, ऐसे विश्व के राजा बनेंगे। उसका अनुभव, उसकी स्थिति अभी बना ली। सतयुग में कोई अप्राप्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, संतुष्ट, तृप्त, भरपूर, सत्ता, सौंदर्य, संपत्ति, स्वास्थ्य, सुसंस्कार, सब कुछ प्राप्त। ऐसी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव संगम युग में हमें करना है। संगम युग की अंतिम स्थिति हमारी सतयुग की पहली स्थिति बनेगी। संगम युग में एचयू प्राप्ति कर करके लास्ट जो स्टेज हमारी बनेगी, उसी स्टेज से सतयुगी रोल हम शुरू करेंगे। इसलिए अभी वो बेफिकर बादशाह की स्थिति बनानी, सतयुग में अपार संपत्ति के बीच शरीर और आत्मा के अपार सौंदर्य के बीच हम निर्विकारी होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। नेचुरल आत्माभिमानी होंगे, वो स्टेज अभी बनाने। संगम के अंत में, माना कलयुग के अंत में, जब दुख के पहाड़ गिरने हैं, अति के समय अपने आप को निश्चिंत, बेफिकर, केयरफ्री, बेफिकर केयरफ्री रहना, केयरलेस अलग है, ये केयरलेस है, बेपरवाह, अलबेला वो अलग चीज, केयरफ्री। अभी जो बनेगा वो उस विश्व में, उस स्थिति में प्रारब्ध भोगेगा। संगम के अंत में कहने का भाव समझ गए ना, कलयुग के अंत में हर बात अति की होगी। दुख, अशांति, समस्याएं, विघ्न, विकार, व्यसन, बुराई, हर चीज अति पर जाएगी। रहते हुए बाबा ने इस सीजन में हमें बेफिकर बादशाह बनने के लिए फिर कहा, संतुष्ट रहने के लिए फिर कहा। ये सिग्नल है अब आने वाली परिस्थितियां कैसी होगी, उसका सिग्नल है ये। इसलिए पहले से तैयारी बाबा करा रहे, पूरे ड्रामा के अंदर, चाहे द्वापर से लेकर कलियुगांत तक ड्रामा में जितना नेगेटिव प्रतिकूल विपरीत विचित्र जो हो सकता है वो होने का ये कलयुग अंत का समय है। जैसे सतयुग माना, जितना सुंदर ते सुंदर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, शुद्ध ते शुद्ध, ऊंचे ते ऊंचा, क्वालिटी से क्वालिटी जो इस संसार में हो सकता है वो सतयुग में होगा। उसके अपोजिट कलयुग के अंत के समय में ड्रामा में जितना विचित्र विपरीत प्रतिकूल पतित नकारात्मक जो हो सकता है वो सब ड्रामा के इस अंत में होगा, इसी को बाबा अति कहते। उसके बीच मुझे स्थिर अचल निश्चिंत बेफिकर बनना है। बाबा ने अपना बनाकर जब से हम सभी ने मर्जी व जन्म लिया, नया योगी जीवन प्राप्त किया, बाबा ने जीने की कला ऐसी हमें सिखाई है कि 50% फिकर चिंताएं ऑटोमेटिक खत्म हो गई। हरेक का अनुभव होगा, दुनिया में लोग अनेक चिंताओं को लेकर सोते हैं, अनेक चिंताओं को लेकर उठते हैं, जागते हैं। लेकिन जब से हम बच्चे बाबा के बने हैं, बाबा ने फिकरों से फारीग कर दिया, क्योंकि जीवन की हर बात बाबा ने हमें समझा दी। सृष्टि के आदि मध्य अंत के राज बाबा ने बता दी। आलोक परलोक के राज बाबा ने बता दी। ज्ञान ही ऐसा दिया है, समझ ही ऐसी दी है, दिव्य बुद्धि की गिफ्ट ही ऐसी दी है कि हमारी बुद्धि हुई बातों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को सही रूप से समझ सकते। जीवन की आधी समस्याएं ना समझने के कारण कभी आप गहराई से एक क्षण साक्षी होकर देखें और सोचिए, सचमुच सत्य ज्ञान न होने के कारण सारी दुनिया भटक रही है, दुख शांति और चिंताओं में फंसी हुई। जितना ज्ञान स्वरूप बनकर हम चलते हैं, परिस्थिति सामने आते ही उसको पार करने की समझ आ जाती है। बात आई नहीं और बात को पार करने की युक्ति समझ आ जाती। कितने भाई बहने कहते हैं, रोज की रोज समस्याओं का जवाब पार करने का मुरली से ही मिल जाता है। हम एक घड़ी दुखी होना चाहे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान ही हमें समझा देता है। इसलिए सबसे पहला सद्ज्ञान पर आधारित श्रेष्ठ जीवन जीने की विधि, कला, रीति, पद्धति ऐसी बाबा ने सिखाई है कि हमारा मन ही समाधान स्वरूप रहता है, समस्या उत्पन्न करने वाला नहीं रहता। हम पहाड़ को राई बनाने वाले, न कि राई को पहाड़ बनाने वाले। हम तो राई को रुई बनाने वाले। ये हमारा मेंटल एटीट्यूड हर परिस्थिति, घटना, बात के प्रति बाबा ने बना दिया। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने मात्र से 50% चिंता फिकरें खत्म हो गई है ऐसा? हाँ तो ताली बजाओ। ये सत्य में कह रहे, दूसरी बात, दुनिया में कोई भी मुसीबत, समस्या, परिस्थिति आती है, उनको न सिर्फ चिंता फिकर हो जाती है, उनको तो शॉक लग जाता है, आघात लग जाता है। ये क्या हुआ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये क्या हो गया, उनको तो शॉक लगता है। वे सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसे बच्चे निकलते हैं, ऐसे परिवार होता है, ऐसे साथी होते, धोखा देता है कोई, क्या क्या व्यवहार करते हैं। इसलिए मानसिक बीमारियां हो जाती है, शारीरिक बीमारियां हो जाती, लेकिन बाबा ने हमें पहले से बता दिया है कि ये अंत का समय है, ये परिवर्तन का समय है। हलचलें होंगी, बातें आएंगी, अति के अंत का समय है। इसलिए जब पहले से पता है तो कोई भी समस्या आने पर, फिर वो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मनुष्यों के स्वभाव संस्कार कर्मों से उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं, पर हमें पता है, बाबा ने बता दिया है, अंत का समय, परिवर्तन का समय, ये सब होना है, तो हमें वो शॉक नहीं आ सकता है। कुछ भी होता है तो बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा ने हमें पहले से कहा है कि ये सब होना है। जब जानते नहीं हैं और होता है तो शॉक लगता है, पर जानते हैं ये सब होना है और होता है तो इतना उसका असर नहीं आता है। हम उन समस्याओं के प्रभाव से न्यारे, निर्लेप रह सकते, फिर वो हिसाब किताब मेरे संबंध में भी क्यों ना हो, माना मेरे खुद के आगे भी क्यों ना आए। पर पता है ये होना है, और इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बाप की आज्ञा है सहन कर। इतना सहन करने का सोच के इंसान भारी हो जाता है, दुखी हो जाता है। हम अपनी शांति की स्थिति में रहकर अंदर से बाबा को याद कर, हिम्मत, धीरज, योग बल से इन बातों को पार करते। परिस्थिति आती है, फिर शारीरिक बीमारी हो, आर्थिक मुसीबतें हो, पारिवारिक कोई बातें हो, बुद्धि सोच सकती है कि क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। अगर वो हो रहा है तो वो बाबा ने हमें बताया है, तीसरी बात बाबा ने हमें कहा है कि ये कल्प के अंत का समय, जीवन के अंत जन्म बाई जन्म होते रहे। बाबा कहते हैं ना, दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते, युग बीते, ये तो कल्प पूरा हो रहा है। जैसे हर संस्थाओं में, बैंक में, कंपनीज में ईयर एंडिंग आता है ना, अकाउंट्स क्लियर करते, ये कल्प एंडिंग है। 84 जन्मों के माइनस प्लस माइनस प्लस खाते जो चलते रहे हैं, उसका फाइनल हिसाब क्लियर करना है। रहा सहा बचा खुचा किसी भी जन्म का, किसी भी आत्मा के साथ का, कोई भी साधन प्रकृति पशु पंछी के साथ का हिसाब अभी क्लियर होना है। इसलिए हमारे लिए आश्चर्य की भी बात नहीं कि मैं तो इतना अच्छा इनके साथ चला फिर भी उसने ऐसा किया। हमने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं सोचा, पर आगे के जन्मों में किसको पता है क्या किया। कई बार इंसान अच्छा होता है और कोई बुरा करते हैं तो भी प्रश्न आश्चर्य दुख, पर बाबा ने उसकी भी हमें समझ दे दी है कि चलो इस जीवन में इस अंतिम जन्म में अच्छे रहे, पर किस जन्म में किसके साथ क्या हिसाब बने किसको पता है। इसलिए कोई बात नहीं, कोई और जन्म का हिसाब रहा होगा सामने आया है उससे भी क्लियर करना है। जानते हैं ना कि जब कोई कंपनी कोई बिजनेस वाला जब दिवाला मारता है तो इधर उधर के छोटे मोटे आगे पीछे के सब लेनदार निकल के आते हैं, भाई मेरा भी बाकी है मेरा भी चुका दो, मेरा भी बाकी है मेरा भी चुका दो। तो ये 63 जन्मों का उधार द्वापर युग से पता नहीं किस किस के साथ, वो सारे इस अंत के समय में सामने आ सकते हैं। तो हिम्मत धीरज और योग बाबा को साथ रखकर ठीक है ये भी चुका देंगे ये भी चुका देंगे। और चुकाना कैसे है, सहन करके भोगना भोग के और याद से। और अच्छी बात ये कैसे हिसाब चुकाने के समय भगवान हमारा साथी बन गया है। जब चुकाने का होता है इंसान को उस समय तो पता है ना, अच्छे अच्छे भी संबंध छोड़ के चले जाते, भाई कोई अच्छा करे। कल मैंने एक वाक्य पढ़ा है कि कोई आपका अच्छा कोई व्यक्ति अच्छा करे तो आप कहते हैं कि वो मेरा फ्रेंड है, पर जब कोई मुश्किल में हो तब कहे कि मैं उनका मित्र, वो बहुत कम लोग मिलते। बाबा वो साथी है हिसाब चुकाने के समय, कोई किसका साथी नहीं बनता उस समय बाबा हमारा साथी बना। भल प्रैक्टिकल चुकाना हमें ही होगा। आज एक व्यक्ति बीमार है, पैसे वाले घर का है, अच्छी हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, अच्छे डिलेक्स रूम में, अच्छी सुविधाओं में ट्रीटमेंट मिलेगी, पर दर्द तो खुद को ही भोगना होता है, उसका भागीदार कोई नहीं बन सकता। पर साथी संबंधी सुविधा सब है तो फिर भी दर्द कम लगेगा। तो हिसाब चुकाने वाली परिस्थितियों में इस अंत के समय सुख देने वाला, दयालु, कृपालु, कल्याणकारी, रहम दिल, प्यार का सागर बाबा मेरे साथ है, भल मैं ही चुकाऊंगी पर ऐसा मेरे साथ है तो कितनी मदद मिलेगी, शक्ति रहे। तो हम अपने को कितने भी हिसाब किताब, तकलीफ, विघ्न, मुसीबतों के बीच सहज निश्चिंत रख सकेंगे। और व्यक्ति का भूतकाल, हिसाब किताब जो बने वो पास्ट में वो ही सामने आते, चाहे इस जन्म में भी भूले की है पर होने के बाद सजा सामने आती है ना, इसलिए व्यक्ति का पास्ट माना इस क्षण से पहले का, ब्राह्मण जन्म से पहले का कैसा भी हो, पर ब्राह्मण जन्म लेने के बाद, बाबा के बनने के बाद अगर हम जीवन को सुधार देते हैं, संस्कारों को बदलते हैं, आदतों को बदलते हैं, वर्तमान में अपने मन वचन कर्म और तन मन धन समय श्रीमत पर सफल करते हैं, सत्य बनाते हैं, तो ये सत्कर्मों की शक्ति पापों के हिसाबों को चुकाने में फिर भी बल देते, मदद करते। बात को समझ गए ना, कि वर्तमान सत्कर्मों की शक्ति पाप कर्मों के उधार हिसाब को चुकाने में मदद करते, क्योंकि जमा हो रहा है ना, तो वो जो विकर्मों से उधार का खाता है उसको चुकाने में मदद रहे। जो विकर्म हुए, पाप हुए, हम जानते हैं वो माफ नहीं हो सकते, हुआ माना नूंद हो गई, हिसाब बन गया, भल हम माफी भी मांग ले पर हिसाब तो चुकाना पड़े। माफी मांगने से बोझ कम लगेगा पर हिसाब तो चुकाना ही होता है। पर सुधर जाते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, श्रीमत पर चलने लगते हैं, सत्कर्म श्रीमत पर चलना, भगवान के कार्य में मददगार बन जाना, वो जमा आत्मा को हिसाब चुकाने में मदद करता है। इससे भी हमें फिकर चिंता कम लगेगी। जब कर्म ठीक नहीं है तो बात आने पर क्यों लोग कई इतिहास में किससे आसपास देखते सुनते हैं कि उनके जीवन का अंत क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो पाप का हिसाब झेल नहीं पाते। बाबा ने हमारे वर्तमान जीवन को श्रेष्ठ बना दिया। रोज बाबा हमें गाइड करते और हमारी भी ये दृढ़ता है, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, ऊपर नीचा आ जाए, श्रीमत मुझे नहीं छोड़ना, ये नहीं मुसीबत आई और श्रीमत से चली तो हो जाए, अज्ञानी जैसा व्यवहार कर्म करने लगे, नहीं, यही तो क्षण है जिस समय मुझे दृढ़ता रखनी थी, जिस दृढ़ता के आधार से ही सब कुछ गंवाया हुआ वापस मिलने वाला था। अगर वो क्षण हम श्रीमत छोड़ देते हैं तो वो रिटर्न कैसे आएगा? कहते हैं ना, एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा था, बहुत ऊंचा और बर्फ वाला, अचानक वो स्लिप हो गया, बर्फ में सरकता सरकता नीचे आ गए, कोई बचाने वाला दिख नहीं रहा था। उसने ईश्वर को कहा, बस कोई पतली सी डाली है कहीं, मतलब अटका, बोला मुझे बचाओ भगवान, यही क्षण अभी मुझे मदद कर। उसको आवाज आता है कि अभी जो तुमने पकड़ा है वो छोड़ दो। उससे होता है कि और तो कुछ पकड़ने का दिख ही नहीं रहा, ये भी छोड़ दो तो कहां मैं गिरूंगा और मरूंगा, अंधेरा था एकदम, कुछ भी दिख नहीं रहा। उससे बार बार आवाज आ रही थी, तुम छोड़ दो छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ा, उसी बर्फ में जम गया, मर गया। और देखा गया कि अगर वो छोड़ देता तो 15 फीट पर ही धरती थी, वो बच सकता था, पर उस आकाशवाणी पर विश्वास नहीं हो। तो नॉर्मल स्थिति में तो हर कोई श्रीमत पर चलता है। जब सब कुछ अनुकूल है, फेवर में है, तब तो हम सब श्रीमत पर चलते हैं ना। पर श्रीमत की धारणा की जिस क्षण परीक्षा होती है, उस क्षण भी हमारा ये फैसला रहे कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब उल्टे हो जाए, सब कुछ चला जाए, मैं जीरो हो जाऊं, कुछ भी हो, मुझे श्रीमत और मर्यादा नहीं छोड़नी। बस वो दृढ़ता ही तो सब कुछ गंवा के सब कुछ वापस पाने का कारण बनता है। हम क्या करते हैं, परिस्थिति आती है तो मदद के लिए पुकारने लगते हैं। चलो भगत की तरह नहीं पुकारेंगे, मन ही मन कहते हैं बाबा को। मदद के लिए पुकारना नहीं है, पर परिस्थिति के लिए श्रीमत क्या है बाबा की, वो आचरण में लानी है। मदद अपने आप मिलती है। धीरे धीरज रख के, कहते ना सत्य की दिशा में कदम उठाने के बाद भी जरूरी नहीं कि तुरंत मंजिल मिल जाए। धीरज से सत्य के मार्ग पर चलते रहना होता है। इस प्रकार श्रीमत पर चलने से जरूरी नहीं तुरंत ही मुझे सब सफलता प्राप्ति विजय सब मिल जाए, नहीं। सत्य पर चलने के बाद भी धैर्य चाहिए। तब दिखता है बाद में कि कैसे पूरा ड्रामा कन्वर्ट होके प्राप्ति हो गई, ये महसूस हम कर सकते। और एक बात, कैसे हम बेफिकर बन सकते हैं और बाबा ने बनाया हम भी कैसे बन सकते हैं, एक के बाद एक बात मैं बता रही हूं। और एक बात, कई बार श्रीमत पर चलने के बाद भी बात ठीक नहीं होती, सफलता नहीं मिलती है, विजय नहीं होता है, तो क्या करना है? और तो कुछ मुझे करना ही नहीं है ना, श्रीमत के अलावा तो और कुछ मुझे करना ही नहीं है ना। जो कुछ करना है ज्ञान के मुताबिक ही मुझे करना है, ये मेरी समर्पण मयता है। तब दो बातें, बाबा पर छोड़ दो, ड्रामा पर छोड़ दो। बेफिकर बनने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ करना नहीं है, बाबा ही सब करेगा, ऐसा बेफिक्र बनने की बात नहीं है। कई भाई बहने ऐसे सोचते हैं कि बेफिक्र माना मुझे कुछ करना ही नहीं है, चाहे कितनी भी बात आ जाए, ऐसा नहीं है। बेफिक्र का मतलब है कि कोई भी बात आने पर मुझ आत्मा को श्रीमत अनुसार जो प्रयास ठीक करने का हो सकता है वो मुझे करना है। माना मेरे तरफ से उस समस्या को, उस मुसीबत को समाधान खत्म करने के लिए मुझे अपनी तरफ से जो रोल प्ले करना है वो मुझे करना है। चाहे स्पष्टता करनी है, बड़ों को बताना है, समझाना है, माना जो भी मेरे तरफ से प्रयास करने हैं वो मुझे करने हैं, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जब नहीं हो तो ओके, बाबा बैठे हैं ड्रामा कल्याणकारी, बाबा और ड्रामा पर छोड़ना है। दुनिया में भी लोग कहते हैं, मानते हैं कि टाइम एंड गॉड आर टू ग्रेट हीलर्स। बाबा ठीक करेगा, ड्रामा ठीक करेगा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए धीरज, श्रद्धा, निश्चय, हिम्मत, ये गुण मुझे उस समय अपने में धारण करने, माना अप्लाई करने, धारण तो है जीवन में पर उस समय मुझे अप्लाई करने, और ये होगा कि आप बाबा को बताएंगे, बाबा मैंने आपको बता दिया, अब आप ही ठीक करना, मैंने किया, मेरे से नहीं हो रहा, वो बताकर फिर निश्चिंत होंगे, फिर वो बात मन में आएगी, फिर बाबा को बताओ, फिर अपने में शक्ति, फिर आएगा, कब होगा, कैसे होगा, फिर बाबा को याद कर। ऐसे करते करते अगर मेरा ये व्रत कि बाबा को ही मुझे बताना है और बाबा ही मेरा ठीक करेगा, मुझे कोई और के प्रति बुद्धि से घूमना नहीं है, भटकना नहीं, सचमुच धीरे धीरे वो स्थिति आएंगी जो आप निश्चिंत निर्संकल्प बन सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, फिकर दे दो, फखूर ले लो, चिंता बाबा को बता दो, बाबा के बताए हुए ज्ञान अनुसार हल करने का पुरुषार्थ करो, ड्रामा पर छोड़ दो उसके बाद में, और उस फकूर में, कौन सा फकूर, नशा, स्वमान, मस्ती, जो कुछ कहो, रूहानी मस्ती, कि जिसके लिए सारी दुनिया गाती है, बिगड़ी को बनाने वाला वो मेरा बाबा है, वो मेरी भी बिगड़ी को जरूर बनाएगा, उस नशे में हम रह सकते, पर ये सब कुछ वो कर सकेगा जो प्रैक्टिकल लौकिक अलौकिक जीवन में सदा ट्रस्टी बनकर रहा है, बाबा के प्रति समर्पित भाव से जिया है, जिसको कहते हैं जिसने सही अर्थ में मेरे को तेरा किया है, तो आत्मा में शक्ति रहेगी उस समय जब फिकर वाली बातें आए फिर भी आप निश्चिंत रह सके, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लौकिक अलौकिक जीवन में मेरा सब कुछ, मेरा जय, मेरी प्राप्तियां, मेरे लाभ, मेरी स्तुति, महिमा, सभी अचीवमेंट्स में मैंने बाबा को आगे रखा है, बाबा को समर्पित किया, तो आत्मा में शक्ति आएगी। जब हार होगी, अपमान मिलेगा, नुकसान होगा, ग्लानी होगी, उस समय मुझे स्थिर, अचल, निर्लेप, न्यारे रहने की शक्ति मेरे में आ जाए। इसलिए अवश्य ही आने वाले समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाबा ने अभी से हमें तैयार करने के लिए इस सीजन में ये पाठ पढ़ाया है। अब तक जो समय चला वो तो पढ़ाई का समय चला, परीक्षा का समय तो अब है। हम तो छोटी छोटी बात में बोलते रहते, बहुत बड़ी मेरी परीक्षा हुई। वो परीक्षा नहीं, वो तो प्रैक्टिकल पढ़ने का बात है। पढ़ाई में जो डिफिकल्टी आती है वो है, पढ़ा हुआ कितना है, पढ़ाई हमने कैसी की, रिजल्ट दिखाने की परीक्षाएं तो अब आ रही है। परीक्षा तो क्या हमने पढ़ा, कैसा पढ़ा, उसकी होती है ना। तो भगवान ने जो हमें पढ़ाया पूरे संगम भर में, हमारी दादियों ने हमें जो पढ़ाया बाबा के तरफ से निमित्त बनकर, प्यार पालना के साथ जो हमारे बड़ों ने हमें पढ़ाया, वो मैंने कितना पढ़ा, बस वो रिजल्ट बताने के समय परिस्थितियां अब है। पर हम इतनी तैयारी जिसको कराई गई हो, ऐसा स्टूडेंट एग्जाम के समय निश्चिंत होना चाहिए ना। मैं जिसने सारा वर्ष पढ़ाई में ध्यान ही ना दिया हो, वो स्टूडेंट एग्जाम के टाइम घबरा जाएगा ना। पर हम तो वो भाग्यशाली स्टूडेंट है जिनको स्वयं टीचर ने, भगवान ने, दादियों ने, बड़ों ने, हमारी निमित्त बहनों ने हमें इतनी तैयारियां कराई हैं, और जिसने अच्छी तरह वो पढ़ाई की तैयारी की है वो तो निश्चिंत निरसंकल्प रहेंगे ना, बेफिक्र बादशाही तो रहेंगे। इसी को जीवन मुक्त स्थिति बाबा कहते। तो हम बन सकते हैं, उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, चेक कर लो सूक्ष्म में। पहली बार अव्यक्त मुरली में ये शब्द था, सब कॉन्शियस में भी फिकर न हो, ये बाबा ने बोला है अव्यक्त बाबा ने। तो कहने का भावर सिर्फ मोटे रूप से मन मनाने की बातें नहीं कि हाँ हाँ मैं निश्चिंत हूँ, बेफिकर हूँ, ऐसे सिर्फ बात नहीं है। ये सच में वो स्थिति चाहिए कि मुझे सूक्ष्म सूक्ष्म में भी, नींद में, स्वप्न में भी कोई चिंता की बात न हो, ताकि जागते या सोते शरीर चित्त तो भी मेरी अंतिम गति श्रेष्ठ ही हो, उसकी पूर्व तैयारी बाबा करा रहे। ओम शांति।
वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता।